نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اس بار ہم نے کوشش کی کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اس سیشن کو جاری رکھیں اور تھوڑی کچھ رمضان کی یاد کو تازہ رکھیں. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی تربیت خود کریں. تربیت یعنی ٹریننگ. آپ جیسے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ تو ماں کرتی ہے، یا اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کوئی ٹیچر کرتا ہے. تو آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن چونکہ آپ ٹیچر کے ساتھ نہیں ہوتے تو ٹریننگ اس طرح سے نہیں آپ کی ہو پاتی. یہاں پہ ہمیں خود اپنی ٹریننگ کرنی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی تربیتی سیشن ہے کہ اپنی ٹریننگ ہم خود کریں گے، ہم اپنے خود ہی ٹرینر ہیں. تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنا جو نفس ہے نا، اس کی باغیں کھینچ کے رکھیں. نفس جو ہے ایک سمجھ لیں ایک موز اور گھوڑے کی طرح ہے. تو ہم نے گھوڑے پہ سواری کرنی ہے، نہ کہ گھوڑا ہم پہ سوار ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ہمارے پر سواری کرے. تو ہم نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، نہ کہ ہمارا نفس ہمیں اپنا غلام بنا لے. تو یہی ہماری کوشش رہی ہے، اور انشاء اللہ تعالی ہم آگے بھی رمضان میں ارادہ تو ہے، اللہ تعالی آگے توفیق عطا فرمائے اور سب خیریت رکھے. تو جو ہم نے آج کیا کریں کا پروگرام کیا تھا، تو سب نے اس کو بہت پسند کیا اور بہت کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ضرور کریں. تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کو رمضان میں سٹارٹ کریں گے، اور آج سے رمضان تک انشاءاللہ تعالی تقریباً ایک ماہ رہ گیا. اس ایک مہینے میں ہم نے ایک طرح سے اپنی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان کے لیے بھرپور تیاری کریں. یہ نہ ہو کہ اس وقت ہم اپنا آپ کو سٹارٹ کریں، ابھی سے چارج کرنا ہے، ابھی سے تھوڑا سا ہمیں فارم میں آنا ہے تاکہ اس وقت ہمیں مشکل نہ ہو انشاءاللہ. تو تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں اس میں، کتنا کچھ ہم نے سیکھا اس لاسٹ ایئر میں، کہاں تک ہم پہنچے، کیا ہم نے فائدہ اٹھایا. کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اپنی جو کمائی کی ہوگی نا، اس کو لے کر حاضر ہوگا، اور وہاں پہ انصاف کا ترازو ہوگا. کتاب رکھ دی جائے گی انسان کے سامنے، اور وہ اپنی کتاب کو خود اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہوگا. تو اسی لیے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ یہی کہا کرتے، اور یہی انہوں نے ہمیں بتایا، ہمارے بزرگوں نے، کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا حساب کرتا رہے. جو انسان اپنا ساتھ ساتھ حساب کتاب کرتا رہتا ہے نا، تو وہ پھر اس کو آخر میں حساب دینے میں مشکل نہیں رہتی. آپ نے مثلاً ایک مہینے بعد اگر اپنا حساب دینا ہے کسی کو، تو آپ روز کا روز اپنا حساب چیک کرتے رہتے ہیں، تو اینڈ میں آپ کو بالکل مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے. ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، میں آگے کیا بھیج چکی ہوں، کیا کر چکی ہوں. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا نا، حساب لیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو. اور مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو قرآن پاک نے قید کر رکھا ہے، اور قرآن حائل ہو جاتا ہے ان کے اور ان کی ہلاکت کے درمیان. مومن دنیا میں نا دین کا قیدی ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ بے خوف نہیں زندگی گزارتا. जब तक कि वो अल्लाह ताला से मिल नहीं जाता, उसको पता है कि मैंने अपने कान की भी, अपनी आँख की भी, अपनी जुबान की भी, सब चीज़ों की हिफाजत करनी है, सब के बारे में मेरे से पूछा जाना है। तो ऐसा वक्त ज़रूर होना चाहिए कि इंसान अपने इन आज़ा से जो भी उसने अमल किया दिन भर में उसका मुहासबा करे रात को सोते वक्त। तो थोड़ा सा मैं आज आपको एक तरह से कुछ सवालात लिखवाऊंगी ताकि आपको अपना हिसाब करने में कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाए, और इनको सवालात को, इस टेस्ट को आपने खुद ही चेक करना, खुद ही ग्रेडिंग देनी है अपने आप को, खुद ही नंबर यानी अपने लगाने हैं, और खुद आपको, ताकि मालूम हो कि मेरे ईमान का लेवल क्या है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगी कि इससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा अगर आप ऑनेस्टली अपने सारे सवालात के जवाब आते हैं। पहला सवाल जो हमारा ईमान को चेक करने का है वो ये है, नंबर वन लिखें आप कि जब नमाज का वक्त आता है, मैं अजान सुनती हूँ जब, तो ए लिखें फौरन उठती हूँ पढ़ने के लिए, बी इतनी देर लगाती हूँ कि दूसरी अजान का वक्त हो जाए, सी पढ़ती नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये पहला सवाल है आपका जो नमाज के मुतालिक है। देखिए इसमें खुद से खुद ऑनेस्ट हूँ तभी फायदा होगा। नंबर टू, जब मैं कुरान सुनती हूँ कहीं पे भी, टीवी पे, रेडियो, कहीं कहीं पे भी, तो ए शौक से आवाज ऊंची कर देती हूँ, बी आवाज बहुत आहिस्ता कर देती हूँ ताकि मेरे कामों में ना खलल पड़े, और सी चैनल ही बदल देती हूँ। तीसरा सवाल है आपसे कि जब अल्लाह के रास्ते में कुछ देने का वक्त आता है, तो ए मैं बगैर किसी रिलक्टेंस के, बगैर तरद्दुद के फौरन अपना पर्स खोलती हूँ, जो भी मुमकिन होता है वो दे देती हूँ, बी बड़ी मुश्किल से मेरा पर्स खुलता है और उसमें खुल भी जाए तो सबसे छोटा नोट निकाल के वो मैं देती हूँ, और सी मैं उस जगह से ही इधर उधर हो जाती हूँ। चौथा सवाल है आपके लिए कि जब मैं किसी मुसलमान को तकलीफ में देखती हूँ या मुश्किल में कोई मुझे नजर आता है, तो ए मैं हेल्प ऑफर करती हूँ बगैर किसी रिलक्टेंस के, बगैर पसो पेश के, बी बड़ी मुश्किल से पूछती हूँ क्योंकि इस वजह से सिर्फ कि इसने भी मेरे फलां वक्त में मदद की थी इस वजह से, और सी मैं ऑफर ही नहीं करती, हमारी बला से मैं क्या करूं, मैं ही रह गई हूं मदद करने के लिए। पांचवा सवाल है आपसे कि जब मैं घर से निकलने लगती हूँ तो शीशे में देख के सोचती हूँ, ए मैं अल्लाह की नजर में कैसी लग रही हूँ, बी मैं लोगों की नजर में कैसी लगती हूँ, और अल्लाह के हाँ तो गुजारा इस हुलिये में चल ही जाएगा। सी मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, कोई भी क्या कहता है मैं वो ही करूंगी जो मैं चाहूंगी। नंबर सिक्स आपका सवाल है, ये 10 सवालात हैं, जहां अल्लाह का जिक्र हो तो मेरा क्या हाल होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं जिक्र की महफिलों में अपने दिल का जायजा लिया करो, तो आप भी लें कि अल्लाह का जिक्र कहीं हो रहा हो तो चाहे किसी मजलिस में हो, किसी महफिल में हो, कहीं पे भी आप किसी दोस्त, कोई दोस्त कर रही है, कोई दर्स है, कोई कुछ है, क्या करती है? नंबर ए दिल चाहता है कि सुनती ही रहो, कभी नहीं खत्म, और बी ठीक है काफी है सुन लिया, अब कब टाइम खत्म होगा, उकताहट होने लगी है, और सी ऐसी जगहों पर मेरा दिल ही नहीं लगता। सातवां सवाल है आपके लिए, जब कोई किसी की गीबत करता है, बुराई करता है, तो ए मैं वहां से चली जाती हूँ और इन्वॉल्व नहीं होती, बी मैं सुनती रहती हूँ और कभी कभी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, सी मैं साथ शामिल हो जाती हूँ और अपना भी झूठ सच साथ मिला देती हूँ। आठवां सवाल है, जब कोई तकलीफ मुझे पहुंचती है, तो ए मैं सबर करती हूँ, इन्ना लिल्लाह पढ़ती हूँ इस उम्मीद से कि आखिरत में मुझे अजर मिलेगा, बी मैं पहले खूब दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ, जब कोई चारा नहीं रहता तो फिर मैं कहती हूँ अब सबर कर रही हूँ मैं, चलो अब सबर ही कर लेती हूँ ये कह देती हूँ, और सी जिससे मुझे तकलीफ पहुंची होती है उसको ऐसा सबक सिखाती हूँ कि अगली बार वो याद रखे कि उसका पाला किससे पड़ा था। नाइन्थ सवाल है, मैं जब किसी की भी मदद करती हूँ या किसी को कुछ देती हूँ, तोहफा तहाइफ, तो ए इसलिए कि अल्लाह ताला इसका अजर मुझे दुनिया और आखरत में देगा और अल्लाह भी मेरी आखरत में मदद करेगा। अब इसमें हर चीज़ आ जाती है, किसी की मदद करती हैं या किसी को कुछ देती हैं, किसी को कुछ खिलाती हैं, किसी को कुछ मुश्किल वक्त में काम आती हैं, मतलब हर तरह की मदद इसमें आ गई और हर तरह की फेवर या वो आ गया कि मैं अल्लाह ताला से इसका अजर दुनिया और आखरत में चाहती हूँ, तो इसलिए। बी ये कल को मुझे ज़रूरत होगी तो ये भी मेरे काम आएगी या मुझे कुछ दे देगी या मुझे खाना खिलाएगी, सी इसके बाद इस बात का खूब चर्चा करती हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने मदद की थी या मैंने खाना खिलाया था या मैंने इसको तोहफा दिया था, और टाइम टू टाइम उसको भी एहसास दिलाती रहती हूँ जिसकी मैंने मदद की थी। और आखिरी सवाल है और बहुत अहम सवाल है, जब अल्लाह का कोई हुक्म सुनती हूँ तो ए समय ना वाता ना करती हूँ, सुनती हूँ और मान लेती हूँ, बी पहले सवाल करती हूँ कि ये क्यों कैसे क्यों कहा गया, और जब समझ में आ जाए तो बड़ी मुश्किलों से हिचकचाते हुए करती हूँ, और सी मैं किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। ये हुए आपके 10 सवालात, अब आप इनको चेक करिएगा, अगर आपके सारे सवालात के जवाबात सी हैं तो मे भी फिर आप ये सोच रही होंगी कि ये क्या फजूल क्विज दे दिया हुआ हमें, भला इसका क्या फायदा, ये क्या बेकार सवालात है। और अगर आपके जवाबात बी हैं तो आप किनारे पे खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त दूसरी तरफ लुढ़क सकते हैं, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, फिर अभी आप आधे तीतर आधे बटेर हैं, और अगर सारे सवालात के जवाब आप ए हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने लिए साबित कदमी की दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आखिरी वक्त तक ईमान की सलामती के साथ रखना। ये आपका ईमानोमीटर था, जैसे थर्मामीटर होता है ना, आपका टेम्परेचर चेक करता है और वेदर चेक करने के लिए भी आलिया होता है, तो समझ लें ये आपका ईमानोमीटर है और इसके जवाब और कोई नहीं जानता सिवाय आपके अपने, आप ही जानती हैं। एक तो आपने ये काम करना है, दूसरा ये है कि आपका इस महीने का जो टारगेट है कि आपने इंशाल्लाह ताला ये अब 1 माह रह गया रमजान शुरू होने में, इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स भी होंगे मस्जिदों में। अब ये है कि आप जरूर कोशिश करें कि आप उनको अटेंड करें, मगर जो आपको टारगेट मैं देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुश्किल है नहीं भी है, अगर आप मुश्किल समझेंगे तो होगा, लेकिन बहुत आसान इस तरह से है कि आपने कुराने पाक का पूरा तर्जुमा पढ़ना है इस 1 माह में, रवां तर्जुमा। एक किताब तो पढ़ ही लेती है ना आप, और स्पेशली जिनको रिसाले और उनका अफसाने नावल पढ़ने का शौक है उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये टारगेट, क्योंकि इसका तरीका ये होगा कि आप जैसे कोई किताब पढ़ती हैं तो जिस टाइम पे आप कोई भी किताब मसलन सोने से पहले पढ़ती हैं या दिन के किसी भी फारिग हिस्से में पढ़ती हैं, तो उस टाइम पे आपने इंशाल्लाह ताला कुराने पाक लेके उसका रवा तर्जुमा पढ़ना है, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप पेंसिल से हल्का सा निशान लगा दें, ताकि जब रमज़ान में इंशाल्लाह दौरे कुरान होंगे, आप अटेंड करेंगे या सुनेंगे इंटरनेट पे सुनेंगे कहीं पे भी सुनेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई थी, ये बात नहीं समझ आई थी, अब ये क्लियर हो गई है, तो आपकी एक तरह से पहले से प्रेपरेशन होगी। होता ही है कि आप रमजान में दौरा कुरान में तो बैठ जाते हैं, फिर रोजा भी होता है, रोजा भी लगा होता है, आधी नींद आ रही होती है, आधे दिमाग होता है, आधा नहीं होता, तो आप बस कैसे जैसा तैसा ही सुनते हैं, बस ये हो रहा होता है कि सिपारा खत्म होगा कितना रह गया, और तो इंशाल्लाह जब आपने एक दफा पढ़ा होगा ना, आप गो थ्रू किए होंगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, जैसे कि सबक आपकी क्लास में स्टार्ट होने से पहले आप एक दफा पढ़ के आए तो आपको ज्यादा समझ में आता है, तो इसी तरह इंशाल्लाह ये आपका टारगेट है, आप अंडरलाइन कर लें या हल्की पेंसिल से लिख दें कि मुझे यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आई, उसी कुराने पाक को फिर आपने अपने साथ रखना है जब आप इंशाल्लाह दौरे कुरान करेंगे। जी फोन पे आपको जैसे कि मैंने बताया अभी कि दूसरे नंबर पे आप करेंगी इंशाल्लाह, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, तो जो हमारा फ्राइडे क्लास का नंबर है वो नहीं चल रहा। अच्छा ये जो 1 माह है आप इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया आपके पास सिर्फ 1 महीने का गैप है रमजान से पहले तक, तो इसमें आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो फिर ही इंशाल्लाह ताला रमजान में भी ताज़ा दम होके अच्छे तरीके से साथ। जी तो अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ताकि इंशाल्लाह रमजान तक आप बिल्कुल सेहतमंद हो। अच्छा जी अब ये जो महीना इंशाल्लाह शुरू हो रहा है ये शाबान का स्टार्ट होने वाला है, और इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखा करते थे, तो आप भी चाहें तो जितने भी आसानी से रख सकते हैं वो रखें, ताकि आपको रमजान में फिर मुश्किल नहीं होगी, फिर आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी रमजान की, और लेकिन ये बात है कि निस्फ शाबान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने से थोड़ा सा मना किया है, क्योंकि जैसे कि हमें हदीस से पता चलता है कि जब निस्फ शाबान बाकी रह जाए तो नफली रोजे ना रखो, तिर्मिजी की रिवायत है। हाँ अगर आपके पिछले साल के रोजे अभी रहते हैं तो फिर जरूर आप उनको मुकम्मल कर लें, लेकिन देखें अफजल तरीन अमल वही होता है ना जो सुन्नत के मुताबिक हो, तो निसफ शाबान यानी 15 शाबान के बाद फिर आप कोशिश करें कि आप नफली रोजे ना रखें, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें रमजान के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कोई कोई हराम नहीं है इसके अंदर कि आपने रखना ही नहीं है, बिल्कुल ये मना है, ये ऐसा है कि अगर आपके पिछले साल के रह गए, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने मुकम्मल कर लिए होंगे लास्ट ईयर के रोजे, अगर जिसके रोजे रह गए हैं तो प्लीज अपने रोजे जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें, क्योंकि अगर रमजान दोबारा आ जाता है तो पिछले साल के रोजे भी आपको फिर उसके बाद रखने पड़ेंगे, और साथ साथ एक मिसकीन को खाना भी खिलाना होगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सी एक आपको रिमाइंडर के तौर पे बताना चाहती हूँ क्योंकि आज तो वक्त नहीं है इतना। आप लोग इंशाल्लाह ताला अपने घरों में मेराज के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पे गए थे उसके बारे में अपने बच्चों को भी बताइए, अपने घर में भी उसका जिक्र करिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क्या देखा वो भी सब आप एक तरह से अपने घर में दोहराएं। क्योंकि ये वो वक्त है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे मक्का से मस्जिद अक्सा तक, और फिर वहाँ से आसमानों की सैर की थी, जन्नत जहन्नम को देखा था, और अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया था। तो हम जैसे दूसरी चीज़ों के मिलने का दिन तो बहुत याद रखते हैं ना, तो हमें ये नमाज कब मिली थी मेराज पे? अल्लाह ताला ने ये स्पेशल तोहफा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के दिया। एक ख़ास चीज़ होती ना जो आप किसी के हाथ में देते हैं, और एक चीज़ है जो किसी के थ्रू आप भेज देते हैं। तो ये वो चीज़ है जो ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला के डायरेक्ट दी गई। और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि पहले 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी, फिर उसके बाद 5 आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें कमी हुई तो फिर 5 हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ये 5 जो है ना 50 के बराबर अजर में है। तो 5 नमाजें जो आप पढ़ती हैं ना तो 50 के बराबर अजर पाती हैं, सुभान अल्लाह। तो आप चूंकि आपको पता चला है कि इस वक्त नमाज फ़र्ज हुई थी, तो कम अज़ कम ये कोशिश करें ये कोशिश करें कि आप सारी नमाजें पूरी मोहब्बत के साथ, खुशू के साथ, शौक के साथ पढ़ें इंशाल्लाह। इसलिए कि ये वो मौका है जब आपको नमाज मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वाकई इसको इनाम समझते हैं तो जरूर इसका हक अदा करते हुए इसको अदा करना इंशाल्लाह। मेरा ऐसा मुझे टाइम दें कि मैं फोन पे दूसरे लोगों को दे दूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे वक्त है ताकि दूसरे लोग भी फोन पे आ सकें इंशाल्लाह ताला। कुछ फोन वाले लोगों के साथ मसला हो गया। एनी हाउ आज की हम दुआ देखते हैं कि जो दुआ इस मंथ की आपके लिए है बहुत ही प्यारी दुआ है, और सारे ही हमारे कामों के अच्छा होने के लिए दुआ है ये। आप इस दुआ को लिख लें, और वैसे आपको काफ़ी उसमें किताबों में भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना, क्या मतलब हुआ? ए अल्लाह अच्छा कर दे आकिबतना, यानी आकिबत क्या होती है? जो अंजाम है, अंजाम हमारा फिल उमूरी कुल्लिहा, सारे ही कामों में जो भी काम है उनमें हमारा अंजाम अच्छा कर दे। वा अजिरना, जैसे अल्लाहुम्मा अजिरनी कहते हैं ना, इसी तरह वा अजिरना मिन खिज़्यिद्दुनिया وعذاب الآخرة. तो ये दुआ है आपकी इस्मा की, और देखिए इसके अंदर सारा कुछ ही आ गया कि अल्लाह हमारे सारे ही कामों का अंजाम अच्छा कर देना, और हमें दुनिया की रुसवाई से भी बचाना और आखिरत के अजाब से भी। तो बहुत प्यारी दुआ है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फजर के बाद जो आपको तिलावत कुरान पाक का टारगेट दिया गया था, उम्मीद है कि आप उसको पूरा कर रहे होंगे। आपने अपनी तिलावत जारी रखनी है, दो रुकूआत की जो आप कर रहे थे, इसके अलावा जो आपने इंशाल्लाह तर्जुमा पढ़ेंगे इसके अलावा, ठीक है। और तजवीद के साथ पढ़ना है ऊंची आवाज में इंशाल्लाह। ये इस माह का हमारा टारगेट है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम इसको कंप्लीट कर सकें इंशाल्लाह, और हमारे लिए आसानियां करे अल्लाह ताला। आने वाला रमज़ान हम सब के लिए इंशाल्लाह मुबारक करे, और हमारे ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।